नमो यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दु शुद्धवागिदे अमितवाद शक्तियिंद सकल तत्व तिळिदिदे लोकदल्लि वीतराग पूज्य पदवि होंदिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की चार गतियां हैं। चार गति में से मनुष्य गति का भेद प्रभेदों का वर्णन सुना, त्रयंश गति के भेद प्रभेदों का भी वर्णन सुन लिया। अब पेज नंबर 59 देव गति के देवों के भेदों के संबंध में कुछ जानकारी लेंगे। इसके पश्चात नरक गति की व्यवस्था एक बच जाती है। उसके उपरांत हम इस पुस्तक के अंदर मेन विषय जो प्रथम चार्ट है वहां प्रवेश करेंगे। देव गति के देवों के भेद ब्रैकेट में दिया है 10 + 8 + 8 + 5 + 16 = 23 = कुल भेद 62। वो कैसे 62 होते हैं देखना है। देव गति के देवों में दो भेद करना चाहिए, अधोलोक व मध्यलोकवासी। अधोलोक व मध्यलोकवासी देवगति के देव अधोलोक में भी रहते हैं, जहाँ अपन बैठे हैं ना इसके नीचे अधोलोक कहलाता है। सुमेरु पर्वत की 1000 योजन की जड़ जहाँ समाप्त होती है उसके उपरांत मध्यलोक समाप्त होता है और अधोलोक आ जाता है। सुमेरु पर्वत के जड़ के नीचे अधोलोक है, यानी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 1000 योजन पृथ्वी में छोड़कर अधोलोक प्रारंभ होता है। लोक के मध्यलोक के 3 भेद किए गए हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग मध्यलोक में माना जाता है, पंख भाग अधोलोक में है, अब बहुल भाग भी अधोलोक में है। खर भाग में हम लोग रहते हैं, जो चित्रा पृथ्वी कहलाती है यही खर भाग है। यह नीचे जहाँ तक पंख भाग नहीं आता वहाँ तक यह खर भाग कहलाता है, हाँ? यहाँ ये मध्यलोक है, इसके नीचे 3 भेद हैं, 3 भाग। यहाँ भी दर्शाया है खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग, ये 3 भाग हैं। अब बहुल भाग में नारकी रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रथम नरक के नारकी अब बहुल भाग में हैं। और पंख भाग में भवनवासी देव और व्यंतरवासी देव, ये दोनों रहते हैं। और खर भाग में व्यंतरवासी देव और भवनवासी देव रहते हैं। व्यंतरवासी देव जहाँ कहीं भी इस मध्यलोक में यानी असंख्यात द्वीप समुद्रों में उनका आवागमन होता रहता है, वहाँ पर भी उनके निवास स्थान बने हैं। व्यंतर देव सब जगह रहते हैं। उनका नाम व्यंतर क्यों पड़ा? यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरः। जहाँ कहीं भी वे विचरण करने वाले होते हैं, इसलिए उनको व्यंतर नाम पड़ा है। तो ऐसे व्यंतरवासी देव और भवनवासी देव ये मध्यलोक में भी रहते हैं। पंक भाग में व्यंतरवासी और भवनवासी दोनों रहते हैं, और अबहुल भाग में नारकी जीव रहते हैं। देखेंगे इनका अधोलोक व मध्यलोक, ये दोनों लोक वैसे देवगति के देवों के निवास स्थान समझना चाहिए। ऊर्ध्वलोकवासी 39 देवों के भेद हैं। ऊर्ध्वलोक में 39 प्रकार के देव होते हैं, वो वैमानिक कहलाते हैं। कौन कहलाते ऊर्ध्वलोक में? वैमानिक देव जो रहते हैं वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, और भवनत्रिक के जो देव रहते हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये देव मध्यलोक में रहते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि ये ज्योतिर्लोक में रहने वाले ज्योतिषी देव हैं। ये किस लोक में हैं? ये मध्यलोक में ही माने जाते हैं। क्यों मध्यलोक में माने जाते हैं? तो जो सुमेरु पर्वत है वह स्वर्ग तक छू गया है। स्वर्ग यहां से कितनी दूरी पर है? हम तो होके नहीं आए, कैसे बताएंगे? हाँ, सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है वही स्वर्ग लोक की दूरी है। तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 1,40,000 1,40,000 ऊंचा है सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो जम्बूद्वीप के बीचों बीच है। कहाँ पर है? यहाँ है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच। ये सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1,40,000। मतलब स्वर्ग यहाँ से कितनी दूरी पर है? 1,40,000 इस पृथ्वी से, मध्यलोक से दूरी पर है। तो 1,40,000 प्रमाण ऊंचाई के इस क्षेत्र को हम किलोमीटर या माइल में निकालेंगे तो कितना होगा? तो लगभग 50 करोड़ मील होगा। 50 करोड़ मील जाएंगे तो स्वर्ग में आप प्रवेश कर सकते हैं। एक बार अवश्य होके आए, और आने के बाद हमको बता दें कि इतनी ही दूरी थी और हम लोग हो करके आ गए, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे सुमेरु पर्वत के उस पार नहीं, सुमेरु पर्वत नहीं, मनुष्योत्तर पर्वत के उस पार नहीं जा सकते, वैसे जीवित अवस्था में कोई भी मनुष्य स्वर्ग के द्वार को प्रवेश नहीं कर सकता। ये अपने प्रकृति नियम हैं। जीवित रहते हुए आप नरक नहीं जा सकते, देवलोक जा सकते हैं। जीवित रहते हुए देव पर्याय में, देव शरीर में रहते हुए वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख है, तीसरे नरक तक। परंतु मनुष्य पहले नरक तक भी नहीं जा सकेगा, और इस खरभाग को जो प्रथम स्तर बताया है इसके नीचे भी ज्यादा वो जा नहीं सकता, क्योंकि जाने का कोई माध्यम नहीं है। ऊपर जा सकता है, अधिक से अधिक कहाँ तक? सुमेरु पर्वत की ऊंचाई जहाँ तक है वहाँ तक जा सकता है, ज्योतिर्लोक जहाँ तक है वहाँ पर भी जा सकता है, और अकृत्रिम चैतालय जो सुमेरु पर्वत के हैं उनकी वंदना आदि के लिए भी, ये सुदर्शन सेठ वगैरह गए थे ना, अंजन चोर के सेठ, वो सुमेरु पर्वत की वंदना पूजन के लिए जाता था। मनुष्य जा सकता है, मध्यलोक में कहीं भी घूम सकता है, किंतु ढाई द्वीप के परिधि के बाहर नहीं जा सकता। कहां तक लेना, ये स्वर्ग तक ले लो। ढाई द्वीप के बाहर की परिधि यहां से लेकर स्वर्ग तक, ऊपर से भी वो जाना प्रयत्न कर ले तो ढाई 45 लाख किलोमीटर विस्तार वाला जो ढाई द्वीप है उसके बाहर मनुष्य जा नहीं सकेगा। ऊपर से भी नहीं जा सकता और धरती पर से भी नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार से प्रयत्न करे तो भी हो नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो स्वर्ग की दूरी पता चल गई कितनी, 1,40,000 योजन। स्वर्ग के प्रथम पटल यानी प्रथम विमान का जो पटल है उसके उसमें और सुमेरु पर्वत की चोटी में कितना अंतर है, एक बाल बराबर का, एक बाल। कैसा बाल, अपने सिर के बाल को तोड़ दो और ऐसा प्रवेश कर दो, पार हो जाएगा बाल, उतना ही अंतर है। बाल को निकाल सकते हैं, इसे ये शिखर है उससे बाल निकल सकता है, इतना ही अंतर, टच नहीं है, एक बाल बराबर का अंतर है। लेकिन सुमेरु पर्वत के ऊपर रहने वाले उस स्वर्ग के प्रथम पटल में मनुष्य यदि प्रवेश करना चाहता है तो सिर फूट सकता है लेकिन जाएगा नहीं। मरने के बाद जाने के लिए परमिशन है, क्योंकि मरने के बाद तो औदारिक शरीर, ये स्थूल शरीर है, रहता नहीं। और कार्मन शरीर के साथ, क्योंकि कार्मन शरीर कहीं से भी पार हो सकता है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा और अपना कार्मन शरीर, इन दोनों के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी आत्मा को ले जाने वाला जो कर्म है, आयु कर्म, गति नाम कर्म, वह आपको, आप नहीं भी चाहते हैं तो ले जाएगा, खींच करके अंदर ले लेगा, और कोई भी रोक रहा हो खींच करके अंदर ले लेगा और वहां पर जन्म करा देगा जहां पर आपको जन्म लेना है, जितनी आयु के साथ जन्म लेना है, जिस स्वर्ग में जन्म लेना है वहां जन्म करा देगा। उसी उपपाद शैया पर इस आत्मा को गति नाम कर्म और आयु नाम कर्म खींच करके ले जाते हैं और पैदा कराते हैं। नरक गति नाम कर्म को बांधेंगे तो वह नीचे खींच करके ले जाएगा। त्रिरंच गति नाम कर्म को, त्रिरंच आयु नाम कर्म, आयु कर्म को बांधेंगे तो वह कहीं भी तीन लोक में खींच करके ले जा सकता है, क्योंकि त्रिरंच गति सर्वत्र है। त्रिरंच गति कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, तीन लोक में, यहाँ सर्वत्र त्रिरंच गति पाई जाती है। त्रिसनाली में भी त्रिरंच जीव हैं सर्वत्र, और त्रिसनाल के बाहर भी सर्वत्र त्रिरंच जीव हैं, नीचे भी निगोदी जीव हैं। निगोदी जीव किस गति के, त्रिरंच गति के। त्रिरंच गति एक ही ऐसी गति है जो सर्वत्र है, बाकी तीन गति नियत प्रदेश में है, नरक गति अधोलोक में, देव गति ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में, और मनुष्य गति केवल मध्यलोक में। मध्यलोक में भी सर्वत्र नहीं, केवल ढाई द्वीप में मनुष्यलोक है। तो इसकी जानकारी अपन लेंगे। अधोलोक व मध्यलोक वासी 23 प्रकार के देव हैं जो भवनत्रिक के देव कहलाते हैं। भवनत्रिक में तीन भेद करना चाहिए। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं, ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। अब इनका गुणस्थान समझेंगे। भवनवासी देवों में गुणस्थान कितने, पर्याप्तक अवस्था में एक से चार और निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में कितने हो सकते हैं? एक और दो। चौथा क्यों नहीं? चौथा क्यों नहीं? हाँ, कोई भी त्रियंश या मनुष्य यही मर करके वहां जाने जाता है ना, यही वहां जाता है, वहीं के वहां भी जन्म नहीं लेते और वहां से वैमानिकों में भी जन्म नहीं होता, वैमानिक के देव वहां भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते। तो जन्म लेने वाले दो ही गति के जीव हैं, कहां पर भवनवासी बने या देवगति में कहीं भी जाए तो दो ही गति से जाते हैं। किस गति से? मनुष्य गति से। मनुष्य गति में भी कौन से मनुष्य जाते हैं? तो पर्याप्तक मनुष्य जाते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य देवगति में नहीं जाते, त्रियंश गति से जाते हैं। कौन से त्रियंश जाते हैं? पर्याप्तक त्रियंश जाते हैं, संगी पंचेंद्री व असंगी पंचेंद्री जीव जाते हैं, किंतु चौरेंद्री, तीनेंद्री, द्विइंद्री, एकेंद्री ये तो देवगति में जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? एकेंद्री से चौरेंद्री तक के देव त्रिरंश देवगति में क्यों नहीं जाते? हाँ, मन नहीं है, मन नहीं है, मन के बिना देवगति में नहीं जाते, ये भी ठीक है। अब मन नहीं है तो इतना बड़ा पाप या पुण्य भी नहीं होता। दूसरी बात, असंगी पंचेंद्री जाता है लेकिन वह भवनत्रिक में ही जाता है, ऊपर के स्वर्गों में वैमानिकों में जन्म नहीं लेता। मन ना हो और पांच इंद्री हो तो इन पांच इंद्रियों के माध्यम से भी कुछ पुण्य हो सकता है। किसके लायक? स्वर्ग में जन्म लेने लायक पुण्य संग्रह हो सकता है। स्वर्ग में जाने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए, मंद कषाय चाहिए, मंद कषाय से पुण्य होगा, पुण्य से देवगति में जन्म होगा। तो कम से कम इंद्रियां कितनी चाहिए? पांच इंद्रियां चाहिए, पांच इंद्री। मन नहीं भी हो तो चलेगा, पांच इंद्रियां चाहिए। अगर एक इंद्री कम हो तो, एक ही इंद्री कम है, कौन सा? कर्णेन्द्री, कर्णेन्द्री अंतिम इंद्री है, स्पर्शनेन्द्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री, चक्षु इंद्री, कर्णेन्द्री अंतिम इंद्री है। ये अगर नहीं मिला, जिनको कान नहीं होता वो स्वर्ग नहीं जाते, नियम बना लो। जिन जीवों को कान नहीं होता वे स्वर्ग जाते नहीं है। मक्खी को कान है क्या? नहीं। चींटी को कान है क्या? अली को कान है क्या? पेड़ पौधों को कान है क्या? नहीं। शब्द ये सुनाई नहीं दे सकते इनको। इंद्री हो तो कम से कम पांच इंद्रियां चाहिए, मन हो तो और अच्छा है। संगी पंचेंद्री जीव सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है लेकिन असंगी पंचेंद्री जीव भवनत्रिक तक ही जा सकता है, ऊपर गमन नहीं है। असंगी पंचेंद्री जीव का जन्म मध्य लोक में ही होगा, ऊर्ध्व लोक में जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि भवनत्रिक के देव मध्य लोक में ही रहते हैं, मध्य लोक में ही उनका जन्म होगा। अधोलोक में अगर होगा तो भवनवासी या व्यंतरवासी नीचे बन सकता है। कहां तक जाएगा? पंक भाग तक जन्म ले सकता है और वहां जन्म लेकर लेने के बाद नरक में अधोलोक में उसका गमन है क्या नहीं ये पूछे तो गमन कर सकता है। कहां तक गमन कर सकता है वह देव? तो तीसरे नरक तक जा सकता है। तो देव बनकर तीसरे नरक तक क्यों जाता फालतू? वहां का दुख भोगना है क्या? नहीं, देव नरक में जाते हैं तो वहां के दुख को वो अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इतना पुण्य है कि वहां का कोई भी प्रभाव उन पर पड़ नहीं सकता। असुर कुमार देव, छेड़ाला में सुना है ना, असुर कुमार देव कितने कौन से नरक तक जाकर के दुख देते हैं, तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को भिड़ाते हैं, दुख देते हैं, सताते हैं। उनका वही काम है, पूर्व भव में ऐसा ही किया है, ऐसा पाप कर्म किया है, इसलिए असुर कुमार बन करके उस पंख भाग में जन्म लिए हैं। असुर कुमार के जन्मों का, असुर कुमार देवों के जन्म का जो स्थान है वो पंख भाग है। पंख भाग, पंख खर भाग के नीचे, ये खर भाग जहां हम बैठे हैं इसके नीचे पंख भाग, इसके नीचे अब बहुल भाग, यहाँ नारकी रहते हैं, यहाँ भवनवासी और व्यंतरवासी त्रियंच रहते हैं, और इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, त्रियंच और मनुष्य मध्य लोग, सुमेरु पर्वत इसी पर है। इसको चित्रा पृथ्वी भी कहते हैं, इसका नाम चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी की मोटाई जितनी है उसी को खरभाग बोला जाता है। इस प्रकार से ये तीन लोक की रचना है। तो अपन समझेंगे गुणस्थान भवनवासियों के कितने होते हैं, एक से चार होते हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में कितने होते हैं, एक और दो, दो गुणस्थान होते हैं। अच्छा, अब भवनवासी देवों के जो निवास स्थान के वो जाति के भेद जो हैं उनको यहाँ पर दिया गया। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, यानी उनकी 10 प्रकार की जाति है, ग्रुप है ये ग्रुप। पहला नाम क्या है, असुर कुमार जाति के देव। असुर कुमार, ऐसे जाति के देव कितने रहते हैं, असंख्य रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, पंख भाग में रहते हैं। इनका, इनकी उपपाद शैया कहाँ बनी हुई है, पंख भाग में, उपपाद शैया में ही जन्म लेते हैं। इनका भी जन्म अंतर मुहूर्त में होता है, अंतर मुहूर्त के अंदर होता है। यहाँ से कोई मनुष्य त्रियंच संगी पंचेंद्री या असंगी पंचेंद्री मरण करके गया, पहले गुणस्थान के साथ या दूसरे गुणस्थान के साथ, संगी पंचेंद्री दूसरे गुणस्थान के साथ जाता है, असंगी पंचेंद्री नियम से पहले गुणस्थान के साथ जाता है, जा करके भवनवासी बनना है, चला गया। जहाँ असुर कुमार देव हैं उनकी जो उपाद शैया है उनके भवनों में, वहाँ उपाद शैया में ये आत्मा पहुँच जाती है, अंतर मुहूर्त के भीतर शरीर की रचना होती है, उठ के बैठ जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है। शरीर बनने के लिए अंतर्मुहूर्त लगता है, अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के लिए और एक अंतर्मुहूर्त लगता है, अंतर्मुहूर्त के पश्चात अवधि ज्ञान प्रकट होते ही लगा करके देखता है कि मैं कहाँ से आया। तो मैं कहाँ से आया, मैं कोल्हापुर से आया, इधर कैसे आ गई अधोलोक में, अधोलोक में कैसे आना हुआ, तो क्या करूं, सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया, पहले गुणस्थान के साथ मरण हुआ और मुझे यहाँ आना पड़ा। अब पता चल रहा है कि सम्यक दर्शन का क्या महत्व है। अब असुर कुमार देव बन गया, वहां से जाकर के अब कम काम क्या है उसका, वहां नारकियों को दुख देना या तो अपने भवन में रहना। ऐसे असुर कुमार देव वहां पर कितने हैं, तो असुर कुमार नाम के जाति के देव असंख्यात हैं। वो जो नरक है वो एक राजू प्रमाण है, पहला पटल, उसके कितने पटल हैं, 30 क्या कितने बताए हैं ना, हाँ पटल, पटल संख्या अंतिम चार्ट में ही देखो, अंतिम चार्ट में हाँ इसके नीचे ही पटल कितने, 30 पटल, 30 लाख हैं, नरक बिल 30 लाख हैं, पटल संख्या 13 हैं, 13 पटल और 30 लाख बिल। पटल यानी क्या, तो देखो ये नरक पृथ्वी, हाँ ये नरक पृथ्वी कितनी मोटाई है, तो इसकी मोटाई बहुत मोटी है, तो इसके अंदर पटल बनी हुई है। इस पृथ्वी के अंदर पटल बनी हुई है, पटल यानी पाषाण खंड ही है वो भी। हाँ, परत, परत, पाषाण परत, एक दो, उसके नीचे एक, ऐसे ये पटल कहलाते हैं। नारकी जीव कहाँ जन्म लेते हैं? उन पटलों में जन्म लेते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो वह पहला पटल, उसके नीचे वाले में जन्म लिया दूसरा पटल, उसके नीचे वाले में जन्म लिया तीसरा पटल। तो ये 13 पटल जहाँ समाप्त हो गए उसको प्रथम नरक बताया जाता है। और फिर इसके नीचे कितने ही योजन पर्यंत, असंख्य योजन पर्यंत आकाश है। आकाश प्रदेश को छोड़कर दूसरी पृथ्वी प्रारंभ होती है और उसमें भी पटल हैं। कितने पटल हैं? उसमें 11 पटल हैं। उसकी जो मोटाई है उस मोटाई के हिसाब से उसके बीच में 11 पटल आते हैं, एक के नीचे एक, उसमें नारकी जीव जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार की वहां व्यवस्था है। इन पटलों के बीच में जन्म लेने वाले नारकी जीव वहां जितनी आयु रहती है उतने काल तक वहां रहेंगे, अकाल मरण नहीं होगा, निरंतर प्रति सेकंद दुख को भोगेंगे। नाना प्रकार के दुख वहां होता है, नाना प्रकार का दुख होता है, दुख भोगते रहेंगे। ऊपर ऊपर के पटलों में कम आयु होती है और नीचे नीचे के पटलों में अधिक 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 आयु होती जाती है। पहले वाले पटल में नरक में 10,000 से लेकर के 1 सागरोपम तक की आयु है। किसमें? पहले नरक में, पहले पटल में 10,000 से लेकर नीचे नीचे के पटलों तक, जहां पर प्रथम नरक समाप्त होता है वहां तक उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागरोपम की आयु है। राजा श्रेणी का अभी पहले नरक में ही है ये बताया जाता है। तो राजा श्रेणी कौन से पटल में है इसको अनुमान से समझना चाहिए। पहले पटल में तो 10,000 की आयु है, जघन्य आयु है, उत्कृष्ट भी होगी, 84,000 वर्ष है। तो 84,000 वर्ष ये जघन्य आयु नहीं कहलाई, मध्यम आयु कहलाई, और उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम की कहलाई। तो मध्यम आयु को लेकर के जन्म लेने वाला वह श्रेणी को 13 पटल में से यदि प्रथम पटल में नहीं है तो नीचे के पटल में अवश्य है। लिखा है, उसको भी देखना पड़ेगा किस पटल में है, इसको भी भगवान ने बताया है। भगवान को तो सब दिखता है, हम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ बैठे बैठे देखना चाहिए कि राजा कहाँ हो दिख नहीं सकता, छद्मस्त हमारे ज्ञान के ऊपर पटल है 5 पटल है हमारे ज्ञान के ऊपर। यहाँ 7वीं पृथ्वी में कितने, 5वीं पृथ्वी में 5 पटल है हमारे ज्ञान के ऊपर। 5 पटल हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरि ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इन 5 पटलों को नष्ट करने पर केवल ज्ञान होगा। फिर हम यहीं पर बैठे बैठे राजा श्रेणी कहाँ हैं और स्वर्ग में कौन कौन कहाँ पर बैठे हैं, ये कब गए हैं स्वर्ग, यहाँ कोल्हापुर से कितने गए हैं ये सब पता लगाया जा सकता है। केवल ज्ञान होना आवश्यक है, केवल ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ओरिजिनल ज्ञान है। वह ज्ञान सबके पास है लेकिन ऊपर पटल है, पटलों को तोड़ना पड़ेगा, चूर चूर करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। पहला पटल तोड़ो, मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, ये दो टूट गए तो अवधि ज्ञानावरणी, मन परि ज्ञानावरणी, ये भी टूट जाएंगे। कर्म का बंध जो हो रहा है वो दो पटल के कारण से, दो भी नहीं एक ही पटल के कारण से हमारे लिए ये पांचों पटल तैयार होते हैं। कौन सा पटल है वो? श्रुतज्ञानावरणी कर्म के उदय से श्रुतज्ञान नहीं हो पाता, जीव अज्ञानी बना रहता है, और दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व में पड़ा रहता है, अनंतानुबंधी के उदय से वह परमार्थ में रुचि न रखता हुआ वह लौकिकता में भौतिकता में रुचि रखता है, इस कारण से कर्मों का बंध हो रहा है। यह कर्मों का बंध कौन करा रहा है? श्रुत ज्ञानावरणी कर्म करा रहा है। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म ही राग द्वेष करता है। अवधि ज्ञान राग द्वेष करता है क्या? नहीं। अवधि ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है जैसे आप लोग चश्मा लगाते हैं। अवधि ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है जैसे आप लोग चश्मा लगाए हुए होते हैं ना। चश्मा क्यों लगाते हैं? कुछ देखना हो। और चश्मा नहीं लगाते हैं तो क्यों निकाल लिया? अब कुछ देखना नहीं है। तो बाहरी वस्तु को जब देखने की भावना होती है तब अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है। आत्मा को देखने के लिए अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। आत्मा को देखने वाला श्रुतक ज्ञान है, आत्मा की अनुभूति करने वाला श्रुतक ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान ये दो ही काम में आते हैं मोक्ष मार्ग में। कर्मों का नाश करना हो तो भी मति श्रुत चाहिए, और कर्मों का बंद करना हो तो भी मति श्रुत चाहिए। अवधि ज्ञान से क्या काम होता है? अवधि ज्ञान से केवल आपको पीछे क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा, और वर्तमान में कौन कहाँ है परोक्ष में, ये सब जाना जा सकता है। आपको अवधि ज्ञान हो गया तो घर में आपका बेटा कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, और क्या बोल रहा है, किसके साथ इधर आ रहा है क्या उधर जा रहा है, ये सभी जाना जा सकता है। ये अवधि ज्ञान का काम है। अवधि ज्ञान कुछ ही पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को जानने वाला ज्ञान कहलाता है। मना परे ज्ञान भी मूर्त पदार्थों को ही जानता है। ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी अमूर्त को जानने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि ये ज्ञान केवल ज्ञान जैसी शक्ति को नहीं रखते। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ये स्वभाव ज्ञान नहीं है, विभाव ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान ये चार ज्ञान विभाव ज्ञान है, आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है, आत्मा के स्वरूप में नहीं है, ये स्वभाव रूप नहीं। केवल ज्ञान एक ही स्वभाव रूप ज्ञान है। वह ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो हमारे लिए कोई भी चश्मे की जरूरत नहीं, ना अवधि ज्ञान ना मनःपरी ज्ञान, ये दोनों चश्मे हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसको देखना हो तो मनःपरी ज्ञान का चश्मा लगाओ और देखो। हमारा आगे पीछे का जन्म क्या था, इस सामने वाले का आगे पीछे का भव कितने हैं क्या हैं, इसको देखना हो तो अवधि ज्ञान का चश्मा लगाओ, दिख जाएगा। ये चश्मा अपनी ही दुकान में मिलेंगे, यानी हमारे दुकान में नहीं, आपके दुकान में भीतर जो दुकान लगी हुई है वहीं मिलेंगे। ये बाहर इसकी दुकान नहीं है। पंचम काल में अवधि ज्ञान हो सकता है, मनःपरी ज्ञान नहीं होगा, और वह भी अवधि ज्ञान सब जिस किसी को भी नहीं हो सकता, असयमी असयम दशा में इसको प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म भूमि का भोग भूमि में असयम हो संयम हो, देवगति में नरक गति में संयम तो होता नहीं, वहाँ असयम हो, असयम तो रहता ही है, उनको प्राप्त होता है। देवगति में असयमी रहते हैं, नरक गति में असयमी रहते हैं, उनको नियम से अवधि ज्ञान होता है। नरक गति में सभी नारकियों को अवधि ज्ञान है, सब सब नरकियों को, एक भी नारकी जीव नहीं छूटता, सबको अवधि ज्ञान है। लेकिन मिथ्या दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा तो को अवधि ज्ञान रहेगा, सम्यक दृष्टि रहेगा तो सु अवधि ज्ञान नरक में भी होता है। राजा श्रेणी को इस समय अवधि ज्ञान है, यहां अवधि ज्ञान नहीं था मनुष्य पर्याय में। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद भी उनको अवधि ज्ञान नहीं रहा मनुष्य पर्याय में, राजा के पर्याय में। किंतु मरण करके जब नरक में प्रवेश हुआ, वहां जन्म लिया, जन्म के अंतर मुहूर्त बाद तुरंत अवधि ज्ञान उनको हो गया। भौकी कारण, और जन्म लेते समय अवधि ज्ञान नहीं था, अपर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में जन्म नहीं था या अवधि ज्ञान नहीं था, किंतु पर्याप्ति पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त में उन्होंने अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, इसको प्राप्त करना नहीं पड़ता, कोई इसके लिए त्याग तपस्या संयम धारण करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। जो ऑटोमेटिक होता है उसका नाम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और जो प्रयत्न करने पर, गुणों के विकास करने पर, गुणों की साधना करने पर होता है, उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान त्रिरंश और नारकियों को होता है, त्रिरंश और मनुष्यों को होता है, दो गति के जीवों को होता है। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान दो गति के जीवों को, देव गति और नरक गति, अलग अलग ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान में भी अलग अलग चश्मे हैं, उसमें भी नंबर हैं, अलग अलग नंबर, जिसको जो नंबर आया है वो लगा सकता है। मनुष्य गति में यदि आपको अवधि ज्ञान प्रकट होगा तो नियम से उत्पन्न होते समय तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान ही होगा। गुण प्रत्यय, गुण किसको कहते हैं, संयम आदि गुण, सम्यक्त्व आदि गुण, इन गुणों को कोई विशेष रूप से साधना करता है तो उसको अवधि ज्ञान होना संभव है, असंयमी जीव को नहीं होता। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान बहुत क्वचित किसी किसी को होता है गृहस्थ अवस्था में, मुनियों को बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मुनि अवधि ज्ञानावरणी कर्म को बांधते नहीं है, बहुत कम बांधते हैं। असंयम दशा में ज्ञानावरणी कर्म का बंद अधिक होता है, क्योंकि मोह तीव्र होता है, तीव्र मोह सब प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म के बंद में बड़ा सहयोग देता है, बहुत अच्छा सहयोग देता है। कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। और मोहनी कर्म को हरा करके यदि संयम धारण कर ले, मुनि बन जाए, निर्ग्रंथ साधु बन जाए, श्रमण बन जाए, तो अवधि ज्ञान प्राप्त होना आसान हो जाता है। लेकिन पंचम काल में भगवान ने कहा है अपने भविष्यवाणी में, पंचम काल में अवधि ज्ञान भी मुनियों को इतना सुलभ नहीं है। जो कल्कि आदि होते हैं ना, उस समय में एकाद मुनि को अवधि ज्ञान होने का उल्लेख आता है, 21 कल्कि जन्म लेंगे जो धर्म विनाशक होते हैं और भोगवादी होते हैं, वो कल्कि ऐसा राजा जो भोगवादी, धर्म को जानता नहीं और धर्म पर उपसर्ग करता है, मुनि पर भी उपसर्ग करेगा, ऐसे काल में, वो उपसर्ग करने के काल में मुनि को अवधि ज्ञान होता है और राजा को नरकायु का बंध होता है। ये अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, संयमी होते हैं, संयम की साधना बहुत अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए इनको अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे 21 मुनि होते, 21 मुनि, एक एक कल्कि के काल में एक एक मुनि जो होते हैं उनको नियम से अवधि ज्ञान बताया है। परंतु मध्य में भी हो सकता है, किंतु क्वचित किसी एकाद को हो गया, नहीं तो नहीं। चलते भवनवासियों के 10 भेद हैं। पहला भेद कौन सा? असुर कुमार जाति के देव, दूसरा भेद नाग कुमार। असुर कुमार नरकों तक, तीसरे नरक तक जाते हैं, शेष जो ये भवनवासी देव हैं ये नहीं जाते। कहाँ तक? तीसरे नरक तक। काय के लिए? झगड़ा करने के लिए, लड़ाने के लिए। वो खुद तो नहीं झगड़ते, असुर कुमार से नहीं झगड़ता, पर बेचारे नारकी जी वो वैसे ही दुखी रहते हैं और दुख देने के लिए ये वहां पहुंच जाते हैं। कोई नरक जाए और असुर कुमार जो दुख देता है उसको यदि नहीं चाहते हैं, तो असुर कुमार जो भिड़ाता है वो हमको नहीं चाहिए, तो किस नरक में जन्म लेना पड़ेगा? चौथे के नीचे जाएंगे तो वो आएगा ही नहीं। लेकिन चौथे के नीचे जाने से भी असुर कुमार देने वाले दुख से भी ज्यादा दुख चतुर्थ नरक में आयु ज्यादा है, आयु भी ज्यादा, दुख भी ज्यादा, दुख भी बढ़ता जाता है। सातवें नरक तक उत्तर सभी नरकों में दुख डबल होता जाता है। ये 10 जाति के देव, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ये देव। इसमें सभी देव ये कुछ इसमें मध्यलोक में भी रहते हैं और कुछ पंख भाग में अधोलोक में भी रहते हैं। यहां दिया है, देखो विशेष में दिया, देखो पढ़ो उसको, पढ़ के देखो। असुर देव व राक्षस पंख भाग में रहते हैं। राक्षस कौन है? ये व्यंतर देव है। देखो व्यंतरों के ऊपर कितने भेद बताया, 8। उसमें राक्षस नाम है क्या? देखो कितने नंबर में है, 6वां। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। अब यहाँ बताया जा रहा है असुर कुमार व राक्षस देव ये कहाँ रहते हैं? पंख भाग में। विशेष रूप से इनके निवास स्थान बने हैं राक्षस नाम के व्यंतर देवों के और असुर कुमार के। ये पंख भाग में इनके भवन हैं, वहीं पैदा होते हैं और वहीं भवन हैं इनके। आगे क्या लिखा है? तथा शेष भवनवासी व्यंतरवासी देव खर भाग में रहते हैं। भवनवासी और व्यंतरवासी, खर भाग जहां अपन बैठे हैं ये खर भाग है, यहाँ पर भवनवासी भी रहते हैं और व्यंतरवासी भी। शेष सभी, शेष का मतलब कौन को छोड़कर? असुर कुमार और राक्षस जाति के व्यंतर देवों को छोड़कर बाकी जो भेद हैं वे खर भाग में रहते हैं। और व्यंतर देव मध्य लोक के समुद्र, पर्वत, वन आदि कितने ही स्थानों में उनके निवास हैं। मध्य लोक में यत्र तत्र विचरण करने वाले व्यंतर कहलाते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः। ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्र आदि 5 प्रकार के ज्योतिष विमानों में रहते हैं। देखो ज्योतिष कितने प्रकार के, सूर्य ऊपर दिया है भेदों में, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक और तारक, ये 5 प्रकार के देव हैं। अब यहाँ नीचे और दिया है भवनवासी, सेकंड बिंदु, भवनवासी देवों में जगन्यायु कितनी होती है? तो सर्वत्र 10,000 वर्ष जगन्यायु होती है। उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ल से 1 सागर तक होती है। भवनवासियों में उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ल से लेकर एक सागर तक होती है, एक सागर तक। बीच के विकल्प अलग अलग हैं, बीच के विकल्प मतलब उत्कृष्ट में डेढ़ पल से लेकर एक सागर तक यदि कहते हैं तो बीच के सारे विकल्प बनेंगे, फिर वो पल्योपम के बनेंगे, मध्यम आयु रहेगी, मध्यमोत्कृष्ट आयु। ऊंचाई उनकी होती है 10 से 25 धनुष की, एक धनुष का 5 फुट होता है, 25 धनुष यानी कितने फुट, 125 फुट ऊंचे होते हैं। कौन से देव? भवनवासी देव 125 फुट ऊंचे होते हैं। एक 25 से 5 से गुना करो, 125 हो गए, 125 फुट ऊंचे हो जाते। ऊंचाई और इनकी लेशा कौन सी होती है? लेशा भवनत्रिक में कौन सी होती है? नीचे दिया है, अशुभ 3 लेशा होती है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक में एक शुभ लेशा हो सकती है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक में, और पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा होती है। कृष्ण नील कापोत, देखिए इसको ध्यान रखिए, अशुभ लेशा का मतलब क्या है? तीव्र कषाय, तीव्र कषाय। और अशुभ लेशा के साथ ही ये सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अनुसार उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। नरक में अशुभ लेशा वाले ही नरक नारकी जीव होते हैं, और भवनत्रिक में भी अशुभ लेशा वाले ही सभी देव होते हैं। तो इनके यहाँ अशुभ लेशा होते हुए भी अशुभ लेशा के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, किंतु मनुष्य गति और तिरंच गति में अशुभ लेशा के साथ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कभी होती ही नहीं है। इनको शुभ लेशा चाहिए। कौन कौन सी लेशा शुभ? पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेशा चाहिए। अपर्याप्तक अवस्था में 3 अशुभ होते हैं, पर्याप्तक अवस्था में 1 पीत लेशा सर्वत्र भवनत्रिक में जाना। अच्छा ऐसा है, पर्याप्तक अवस्था में पीत और अपर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा, ठीक ठीक। नरक में अशुभ है, सर्वथा अशुभ है, भवनत्रिक में शुभ लेशा। अब व्यंतरवासी, व्यंतरवासी देवों की जगन्यायु, जगन्यायु सर्वत्र 10,000 वर्ष की आयु होती है, और उत्कृष्ट आयु साधिक यानी कुछ अधिक 1 पल्ल की सर्वत्र आयु होती है। एक ही पल्ल की आयु वाले रहते हैं व्यंतर देव, यही उनकी उत्कृष्ट आयु है। भवनवासियों में डेढ़ पल से लेकर 1 सागर तक बताया था, किंतु यहाँ पर 1 पल्ल से हाँ अधिक नहीं है, साधिक कुछ अधिक है। ऊंचाई 10 धनुष के होती है, यंतर देवों की विषय में ये राक्षस वगैरह कहते हैं ना, इनकी ऊंचाई कितनी अधिक से अधिक? 10 यानी कितनी फुट की? 50 फुट, 50 फुट की ऊंचाई होती है राक्षसों की। तीर्थंकरों के यक्ष यक्षी ये व्यंतर में आते हैं कि किस में आते हैं? व्यंतर में आते हैं। तो इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 फुट की, 50 फुट की होनी चाहिए। हाँ मूल शरीर तो इनके 50 फुट के, तो विक्रिया से वो छोटा भी बना सकते हैं जब यहाँ आएंगे। मूल शरीर इनका 50 फुट का शरीर होता है। लेशा अशुभ 3 लेशा होती है, अशुभ 3 लेशा, शुभ 1 पीत लेशा। तो अशुभ लेशा कैसा लेना चाहिए? अपर्याप्तक निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में 3 अशुभ लेशा और पर्याप्तक अवस्था आने पर 1 पीत लेशा। ज्योतिषी देव नीचे दिया है इनकी जगन्य आयु कितनी होती है। सूर्य चंद्र नक्षत्र में रहने वाले जो देव हैं वो ज्योतिषी इनके इनकी आयु सर्वत्र पल्ल का 8वां भाग, एक पल्ल क्या है, ये आधा पल्ल है। पल्ल में 3 प्रकार हैं, व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल, आधा पल्ल। व्यवहार पल्ल से जीवों की आयु, देवों की आयु नापी नहीं जाती, उद्धार पल्ल से भी नहीं, अद्धा पल्ल से। व्यवहार पल्ल से किसको नापा जाता है? व्यवहार पल्ल से किसी का भी नापतोल नहीं होता। उद्धार पल्ल को नापने के लिए व्यवहार पल्ल का व्यवहार हुआ है, उद्धार पल्ल को और अद्धा पल्ल को नापने के लिए भूमिका है देश। व्यवहार पल्ल से उद्धार पल्ल की सिद्धि होती है और उद्धार पल्ल से नापा जाता है। फिर वो क्या नापा जाता है? असंख्या द्वीप समुद्रों की संख्या उद्धार पल्ल से गिना जाता है, यानी एक उद्धार पल्ल प्रमाण है असंख्या द्वीप समुद्र, ऐसा तिलोयपन्नति में उल्लेख है। इसमें भी आया है, इस पुस्तक में। और उद्धार पल्ल अद्धा पल्ल को नापने में काम में आता है, और अद्धा पल्ल किस काम में आता है? देवों की आयु को बताने में और नारकियों की आयु को बताने में, भोग भूमि के जीवों की आयु को बताने में काम में आता है। अद्धा पल्ल से ही लेना चाहिए, उत्कृष्ट जो पल्ल है उसी से आयु कर्म को बताया जाता है। जब कर्म का बंध होता है ना, कर्म का बंध पल्ल से होता है या तो सागर से होता है, पल्ल से भी होता है और सागर से भी होता है। जैसे सप्ततिर मोहिनी अस्य मोहिनी कर्म का बंध 70 कोटा कोटि सागरोपम तक बंधता है। तो ये सागर किस पल्ल से बना? उत्कृष्ट पल्ल से, अद्धा पल्ल से बना। तो कर्मों का बंध अद्धा पल्ल से होता है। तो 10 कोटा कोटि अद्धा पल्ल का एक सागर माना जाता है। किसी को एक सागर की आयु बंधी तो उसको अद्धा पल्ल से ही लेना चाहिए आयु कर्म का बंध। शायिक सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, शुभ लेशा थी नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय शुभ लेशा थी, मरण के काल में लेशा बदल जाएगी नरक जाते समय। हाँ, छूटता नहीं। देखो, कृष्ण लेशा के साथ 6 लेशाएं हो सकती हैं। कृष्ण सम्यक क्षायिक सम्यक के साथ 6 लेशा हो सकती हैं, किंतु क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के काल में जीव को नियम से शुभ लेशा चाहिए। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद लेशा 6 हो सकती है, अशुभ भी हो सकती, अशुभ भी हो सकती, शुभ भी हो सकती। हाँ, सोक्षम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में भी शुभ चाहिए, उत्पन्न होने के बाद 6 लेशाएं हो सकती है। कौन से गुणस्थान वाले जीवों को? तो बताया पहले से सम्यक दर्शन को लेंगे तो चौथे गुणस्थान से लेना पड़ेगा। लेशा तो पहले गुणस्थान भी से भी रहती है, छौं पहले गुणस्थान में छौं लेशा है, द्वितीय गुणस्थान में छौं लेशा है, तृतीय गुणस्थान में छौं लेशा है, चतुर्थ गुणस्थान में भी छौं लेशाएं हैं। चाहे क्षायिक सम्यक दर्शन हो उसके साथ भी और क्षौपशमिक सम्यक दर्शन हो उसके साथ भी, पंचम गुणस्थान से शुभ लेशाओं का अस्तित्व है। कहां तक? तेरहवें गुणस्थान तक। तेरहवें गुणस्थान में शुभ लेशा एक है, शुक्ल लेशा। नीचे के गुणस्थानों में सप्तम गुणस्थान तक, आठवें गुणस्थान तक कम से कम शुक्ल लेशा ही है। और सप्तम गुणस्थान में शुभ लेशा है जो प्रवृत्तियात्मक सप्तम गुणस्थान कहलाता है, वहां शुद्धोपयोग के साथ एक शुक्ल लेशा है शुद्धोपयोग में, और शुभोपयोग के साथ तीन शुभ लेशा है छठे सप्तम में। पंचम गुणस्थान में वृत्ति प्रतिमाधारी गृहस्थ को सदा शुभ लेशा ही होती है, अशुभ नहीं। शुल्लक अहलक पारिका प्रतिमाधारी श्रावक इन सबको शुभ लेशा ही होती, तीन शुभ लेशा पीत पद्म और शुक्ल, तीन शुभ लेशा। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन क्षायिक हो तो नियम से मरने समय तक वही रहना चाहिए, ऐसा नहीं। शुभ लेशा लेशा बदलती रहती है पर सम्यक दर्शन बचता है। नरक में जाने के बाद फिर सतत अशुभ लेशा के साथ रहना पड़ेगा वहां, क्षायिक सम्यक दर्शन होने पर भी। हो गया। जगन्य आयु सर्वत्र पल्ली का आठवां भाग होता है, उत्कृष्ट आयु सर्वत्र साधिक एक पल्ली होता है, ऊंचाई सात धनुष की होती है, यहाँ पर कम है ऊंचाई, ज्योतिषी देवों की ऊंचाई कम है। देखो इसमें सबसे ऊंचे कौन हो गए? भवनवासी देव ऊंचे हो गए, उनसे कम ऊंचे व्यंतरवासी होते हैं और उनसे कम ऊंचे ज्योतिषी देव होते हैं। और स्वर्गों में जाएंगे तो और भी कम होता जाता है, सर्वार्थ सिद्धि तक जाएंगे ना, एक हाथ के देव होते हैं, एक हाथ प्रमाण इतने। लेकिन शरीर की शक्ति बढ़ती जाती है, हाँ, और भौतिक सुख की मात्रा अधिक होती जाती है ऊपर ऊपर। भवनात्रिक लेशा कौन सी? अशुभ तीन लेशा अपर्याप्तक अवस्था में, शुभ लेशा पर्याप्तक अवस्था में एक शुभ लेशा। भवनात्रिक इंद्र संख्या देखो, भवनात्रिक में इंद्रों की संख्या 40 है। भवनालय 40, व्यंतर देवान होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो, एक पद है ना उसमें इंद्रों की संख्या बताई है। भवनालय 40, भवनवासियों के 40 इंद्र, कैसे इंद्र? उसमें 20 इंद्र और 20 प्रतिंद्र, ऐसे 40 इंद्र प्रतिंद्र की अपेक्षा से 40। इसी प्रकार व्यंतर देवों में 32 इंद्र हैं, 16 16 32 32 ये इंद्र प्रतिंद्र मिलकर के, आधे इंद्र आधे प्रतिंद्र। ज्योतिषियों में सूर्य और चंद्र ये दोनों इंद्र माने जाते हैं, इसमें इंद्र कौन प्रतिंद्र कौन? सूर्य प्रतिंद्र और चंद्र इंद्र। अब देखो महत्व किसको मिला? चंद्र। तो सबसे बड़ा इंद्र ज्योतिर्लोक में कौन है? चंद्र। सूर्य प्रतिंद्र, ऐसा क्यों हो गया? दुनिया को प्रकाशित करने वाला सूर्य इंद्र कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये प्रतिंद्र है। तो ज्यादा अधिकार किसके पास है? वहां चंद्र के पास ज्यादा अधिकार है। और रात्रि में भी घूमता है और दिन में भी घूमता है, इसलिए तो ज्यादा काम करता है। इंद्र का काम ज्यादा ही होता है। ज्योतिषी देव दो दो इंद्र और एक इंद्र हो गया ना, इतने ही। प्रविचार काय से होता है, प्रविचार यानी इंद्रिय सुख का सेवन, ये प्रविचार काय, प्रविचार काय से होता है। ये ज्योतिषी देवों के भेदों का कथन हो गया। नरोत्रियो यानी मनुष्यों में चक्रवर्ती, मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र माना जाता है और त्रिरंचो में सिंह इंद्र माना जाता है। समोशरण में इंद्र चक्रवर्ती, ये सभी भवनवासी यंत्र, ये सभी इंद्र और सौधर्म इंद्र और सोलह स्वर्ग तक के सभी इंद्र, ये सभी पहुंचते हैं और सिंह भी पहुंचता है। सभी इंद्र उपस्थित रहते हैं धर्म सभा में। नरो त्रियो में इंद्र प्रति इंद्र, इंद्र प्रति इंद्र नर, इंद्र ही मानते हैं, इसलिए एक एक की संख्या में है, प्रति इंद्र नहीं होता इसमें, इंद्र ही प्रति इंद्र है, दोनों काम खुद ही संभाल लेता है। कल्पवासी देव कहाँ, समोशरण में, त्रियो, हाँ नहीं नहीं यहाँ का बता दिया, सौधर्मेंद्र मत का वैमानिक देवों को नहीं बताया, वो अलग से है। स्वर्ग के देव इंद्र प्रतिंद्र अहमेंद्र वो अलग हैं, वो कल कथन आएगा, ये भवन भवनत्रिक का कथन हुआ। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।